Episode 21.
कमोबेश 20 साल बाद उपास और मेरिना एक दूसरे को देख रहे थे। मेरिना के कहने पर कोचवान अपनी अपनी बग्गियों के पास चले गए। इनकी मुलाकात बहुत ही जज्बाती थी। कुछ देर तो इनके आंसू एक दूसरे को अपना अपना हाले दिल सुनाते रहे। तुम्हें कैसे मालूम हो गया था कि मैं तुले तुला में मौजूद हूँ, मेरिना ने उपास से पूछा। ये तो कई सालों से मुझे मालूम है, उपास ने जवाब दिया। जूलियन के आदमी यहाँ आते जाते रहते हैं। इनमें से किसी ने मुझे बताया कि जिस मेरिना के खातिर तुमने अपने भाई को नाराज किया और तख्त ताज से दस्तबरदार हो गए थे, वो मेरिना रैडरिक के हरम में है। इसके बाद भी मुझे तुम्हारे मुतालिक पता चलता रहा। हमें यहाँ ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए मेरिना, ये हम दोनों के लिए खतरनाक है। हाँ उपास, मेरिना ने कहा, हमें जल्दी इधर उधर हो जाना चाहिए। तुम तजुर्बाकार जासूस मालूम होते हो, कि तुम्हें ये भी मालूम हो गया कि मैं इस वक्त झील पर होंगी। मैं नहीं, उपास ने कहा, मुझे यहाँ तजुर्बाकार जासूस मिल गए हैं। अपनी कौम के दो गोत मिल गए थे। एक तो उन्होंने ये बताया कि तुम अभी तक महल में मौजूद हो, और दूसरी तीसरी शाम महल की औरतों के साथ झील पर आना तुम्हारा मामूल है। मैं परसों से इस भेष में जंगल में मारा मारा फिर रहा हूँ। आज मेरे जासूस ने मुझे बताया कि तुम औरतों के साथ झील पर जा रही हो। इंतकाम का वक्त आ गया है मेरिना। मैंने रैडरिक से जो इंतकाम लेना है वो तुम जानती हो, और तुमने भी तो इससे इंतकाम लेना है। उसने तुम्हें नौजवानी में अपनी दाश्ता बनाकर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने तो शादी कर ली थी, बच्चे भी हैं। हाँ उपास, मेरिना ने आह भरकर कहा, मैंने भी इंतकाम लेना है। इस वक्त जज्बात को काबू में रखो मेरिना, उपास ने कहा। मैं कह रहा था कि इंतकाम का वक्त आ गया है। मुझे मालूम हो चुका है कि तुम हमलावरों के साथ आए हो, मेरिना ने कहा। ये कौन है? बर्बर, उपास ने कहा। बर्बर मुसलमान, उपास ने उसे तफसील से बताया कि मुसलमानों को जूलियन ने किस तरह हमले के लिए तैयार किया था। फिर उसने कहा, अंदलुस की फौज में गोद भी हैं और यहूदी भी। क्या तुम ये काम कर सकती हो कि जब रैडरिक और मुसलमानों की फौजें आमने सामने आए तो गोत और यहूदी मुसलमानों से जा मिले? कर सकती हूँ, मेरिना ने कहा। ऐसा ही होगा। इस मामले में ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं। और कोई खबर दे सकती हो? हाँ, मेरिना ने जवाब दिया। शाह रैडरिक पेम्पलोना में है और फौज इकट्ठी कर रहा है। लोगों को कहा जा रहा है कि फौज में शामिल हो जाएं। मुस्लिम अफवाज की तादाद कितनी है? 7,000, उपास ने जवाब दिया। अब कुछ कम है, पहले लड़ाई में कुछ मारे भी गए हैं। ओह, मेरिना ने कहा, ये तो बहुत कम तादाद है। मुसलमान पिट जाएंगे, अपने जर्नेल चुडोमेर से पूछना, उपास ने मुस्कुराकर कहा। इन मुसलमानों को लड़ता देखो तो हैरान रह जाओ। ये लोग कुफ्र के खिलाफ लड़ने को जहाद कहते हैं, जिसके माने हैं मुकद्दस जंग। मुसलमान जहाद को इबादत का दर्जा देते हैं और इस इबादत में अपनी जानें देने में रूहानी खुशी महसूस करते हैं। लेकिन ये लोग अंधाधुन जाने नहीं देते। पहले तो ये अपने दुश्मन के लिए मौत के फरिश्ते बन जाते हैं। चूंकि मौत का खौफ इनके दिलों में होता ही नहीं, इसलिए ये निडर होकर दुश्मन की सफा में घुस जाते हैं। इनके जर्नेल ऐसी चाले चलते हैं जो इनका दुश्मन उस वक्त समझता है जब उसकी कमर टूट चुकी होती है। मेरी आंखों के सामने मुसलमानों की 7,000 फौज ने थ्यूडोमेर की 15,000 फौज का जो हाल किया है वो तुम सुन चुकी होगी। ये सोच लो उपास, मेरिना ने कहा। रैडरिक जो फौज इकट्ठी कर रहा है वो 1,00,000 से कम नहीं होगी। ये सोच हम तक रहने दो मेरिना, उपास ने कहा। अगर अभी तक मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल में है तो मैंने जो काम तुम्हारे सुपुर्द किया है तुम वो कर दो। हो जाएगा, मेरीना ने कहा, तुम पागलों की सी हरकतें करते हुए यहां से गायब हो जाओ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, उपास ने कहा और वहां से चला गया। अंदलुस की तारीख लिखने वाले मौरखों ने कुछ रिवायतें लिखी हैं, जो बजाहिर हैरान कुन बल्कि नाकाबिले यकीन लगती हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि ये वाकयात यूरोप के ईसाई मौरखों ने उस दौर की तहरीरों के हवाले से लिखे हैं तो उन पर यकीन करना पड़ता है। ईसाई तारीख नवेसों को तो मुसलमानों के खिलाफ लिखना चाहिए था, क्योंकि अंदलुस की फतह ईसाइयों की ही नहीं बल्कि ईसाइयत की शिकस्त थी। 3 मुस्तनद ईसाई मौरखों ने तारिक बिन ज़ियाद और रैडरिक के मुतालिक एक एक वाकया लिखा है। अंदलुस की फौज के जर्नेल चुडोमेर को शिकस्त देने के कुछ दिन बाद तारिक बिन ज़ियाद घोड़े पर सवार उस तरफ जा रहा था जिस तरफ उसने पेशकदमी करनी थी। कुमक के आने तक उसने इसी मैदान जंग के करीब डेरा डाल दिया था। वहां से लाशें तो उठा ली गईं, लेकिन खून इतना ज्यादा था और जमकर खुश्क हो गया था कि दिन रात तरह तरह के जानवर और हशरातुल अर्ज वहां फिरते और खून चाटते रहते थे। सांपों की बहुतात हो गई थी। तारिक बिन ज़ियाद आगे का इलाका देखने जा रहा था। जूलियन गाइड के तौर पर उसके साथ था और उसके साथ मुगीज़र रूमी और तारिफ बिन मालिक भी थे। उपास कब तक वापस आएगा, तारिक बिन ज़ियाद ने पूछा। पकड़ा ही तो नहीं जाएगा, वो ऐसा अनाड़ी तो नहीं, जूलियन ने जवाब दिया, कुछ करके ही आएगा। वो ऐसे बहरूप में गया है कि उसे कोई पहचान नहीं सकेगा, इसकी गिरफ्तारी का इम्कान कम ही दिखाई देता है। कैदियों से आपको मालूम हो चुका है कि शाह रैडरिक तुले तुला में नहीं, तमाम उम्रा वुजरा उसके साथ गए होंगे, इस सूरत में उपास का काम आसान हो जाएगा। वो बातें करते मल्लाहों और माहीगीरों की बस्ती से आगे निकल गए। तारिख को बताया गया था दूर दूर तक कोई कस्बा कोई शहर नहीं, इसलिए यहाँ फौज भी नहीं। वो और आगे चले गए। इलाका खूबसूरत और सरसब्ज था। कुदरत के इस हसीन खित्ते में छोटी सी एक बस्ती थी जिसके अंदर और बाहर लोग घूम फिर रहे थे। तारिक और उसके साथी बस्ती के करीब पहुंचे तो सब लोग अपने घरों को भाग गए। जूलियन, तारिक बिन ज़ियाद ने कहा, इन्हें शायद मालूम हो गया है कि इनकी फौज को हमने शिकस्त दी है, इन्हें कौन समझाए। हम उन फातह बादशाहों में से नहीं जो कोई शहर फतह करते हैं तो उनके फौजी घरों में घुसकर लूटमार कत्ल गारत और लड़कियों को बेआबरू करते हैं। इब्ने ज़ियाद, जूलियन ने कहा, समझाने की क्या जरूरत है, तुम्हारी तरफ से कोई ऐसी हरकत नहीं होगी तो ये खुद ही समझ जाएंगे। वो ये बातें कर ही रहे थे कि एक ज़ईफ़ुल उम्र औरत बस्ती से निकली और तारिक बिन ज़ियाद के रास्ते में खड़ी हो गई। तारिक ने अपना घोड़ा रोक लिया, उसके साथियों के घोड़े भी रुक गए। क्या तुम में इस फौज का कमांडर भी है जिसने हमारी फौज को शिकस्त दी है, बुढ़िया ने पूछा। हाँ बड़ी अम्मा, जूलियन ने तारिक की तरफ इशारा करके बुढ़िया की जबान में कहा, यह है अंदलुस की फौज को शिकस्त देने वाला फातह। घोड़े से उतरो, बुढ़िया ने तारिक से मरूब हुए बगैर उसे कहा, और अपना सर नंगा करो। मुगीज़र रूमी अंदलुस की जबान समझता था। उसने तारिक बिन ज़ियाद को बताया कि बुढ़िया क्या कह रही है। तारिक घोड़े से उतरा और अपना सर नंगा कर दिया। ओह, बुढ़िया ने तारिक के सर पर हाथ फेर कर कहा, तुम आ गए हो। मेरा खाविंद काहिन था जिसकी पेशन गोइयों की शोहरत दूर दूर तक थी, वो मर गया है। उसने मुझे कई बार कहा है कि बाहर से कौम आएगी اور اندلس کو فتح کر کے اس ملک پر حکمرانی کرے گی۔ اس کے کمانڈر کی نشانیاں یہ ہوں گی کہ اس کے سر اور داڑھی کے بال سرخی مائل ہوں گے اور اس کی پیشانی چوڑی ہوگی۔ وہ تم ہی ہو، تمہارے بال سرخی مائل ہیں اور تمہاری پیشانی چوڑی ہے۔ ایک نشانی اور رہ گئی ہے، اپنا بایاں کندھا ننگا کرو، اس پر ایک موٹا تل اور تل کے ارد گرد بال ہوں گے۔ مغیث الرومی نے طارق بن زیاد کو بتایا کہ بڑھیا نے کیا کہا ہے، پھر اسے کہا کہ وہ اپنا کندھا ننگا کرے۔ بڑھیا ٹھیک کہتی ہے، طارق نے اپنا بایاں کندھا ننگا کرتے ہوئے کہا، میرے اس کندھے پر تل ہے، اندلس کو تم ہی فتح کرو گے۔ بڑھیا نے طارق کا تل اور تل کے ارد گرد بال دیکھ کر کہا، اور تم ہی ہو جو اس ملک کے لوگوں کو بادشاہ اور اس کے کارندوں کے ظلم و ستم سے نجات دلاؤ گے۔ یہ روایت 3 مستند مورخوں سٹینلے لین پال، سٹیفنز اور سمیت نے لکھی ہے۔ میرے رفیقو، طارق بن زیاد نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں تم سب کو، اپنے پورے لشکر کو اپنا خواب سنا چکا ہوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بشارت دی تھی کہ ہمیں فتح حاصل ہوگی۔ اب یہ بڑھیا مجدہ سنا رہی ہے کہ اندلس کا فاتح میں ہی ہوں گا، لیکن یاد رکھو کہ ہمیں جانوں کی بازی لگا کر لڑنا ہوگا۔ اسی رات وہ پاس واپس آ گیا، وہ بڑی لمبی مسافت طے کر کے آیا تھا۔ وہ پہلے جولین کے پاس گیا، جولین اسے طارق بن زیاد کے خیمے میں لے گیا جہاں دوسرے سالار بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اوپاس نے اپنی ساری کارگزاری سنائی، مرینا سے ملاقات اور اس کے ساتھ اس نے جو باتیں کی تھیں وہ سنائی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ عورت اتنا بڑا اور اتنا نازک کام کر دے گی؟ طارق نے پوچھا۔ مجھے اس پر اعتماد ہے، اوپاس نے کہا۔ اگر مرینا یہ کام نہیں کرے گی یا نہیں کر سکے گی تو دوسرے کر دیں گے، گوت قوم کے کچھ سردار وہاں موجود ہیں، میں انہیں مل آیا ہوں۔ لیکن ابن زیاد یہ سن لو کہ ریڈرک کم و بیش 100,000 فوج اپنے ساتھ لائے گا، پیمپلونا سے تلے تلا تک کے لوگ فوج میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ تو میرے لیے بڑی اچھی خبر ہے، طارق بن زیاد نے کہا۔ اگر لوگ فوج میں شامل ہو رہے ہیں تو وہ ہجوم کی صورت میں لڑیں گے، وہ تربیت یافتہ اور تجربہ کار فوج کی طرح نہیں لڑ سکے گی، وہ جنگی تنظیم سے بے بہرہ ہوں گے۔ پھر بھی ہمیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے، سالار طریف بن مالک نے کہا۔ ہمارے پاس اتنی فوج کبھی نہیں ہوگی، ہمیں زیادہ سے زیادہ کمک ملی تو 7,000 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ میں تم سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں، طارق نے کہا، کہ اللہ ہماری فتح کے اسباب پیدا کر رہا ہے۔ اوپاس تلے تلا میں جو کچھ کرایا ہے یہ اللہ کا ہاتھ کر رہا ہے۔ امیر مصر و افریقہ موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ ولید کو طارق بن زیاد کی پہلی فتح کا جو پیغام بھیجا اور کمک مانگی تھی، اس کے جواب میں خلیفہ نے دمشق سے کمک روانہ کر دی جس کی نفری 5,000 تھی۔ کسی بھی تاریخ میں تفصیل نہیں ملتی کہ ان 5,000 میں سوار کتنے اور پیادے کتنے تھے، البتہ یہ حقیقت سب کے سامنے تھی کہ یہ کمک خطرناک حد تک کم تھی۔ تاریخ کے پاس 7,000 فوج تھی جس میں اندلس کی پہلی لڑائی میں کچھ کمی آ گئی تھی جو معمولی تھی، کمک ملا کر نفری 12,000 ہو جاتی تھی۔ ادھر راڈرک کے اعلان کے جواب میں لوگ جوخ در جوخ فوج میں شامل ہو رہے تھے۔ چند دنوں میں ہی راڈرک کی فوج کی تعداد 50,000 ہو گئی اور یہ تعداد تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ راڈرک کو مشیروں نے کہا تھا کہ حملہ آوروں کی تعداد صرف 7,000 ہے اور اتنی تھوڑی تعداد کے لیے اتنی زیادہ فوج اکٹھی نہ کی جائے، ایک تو وقت ضائع ہو رہا ہے، دوسرے اخراجات بڑھ رہے ہیں۔ شیڈومیر نے حملہ آوروں کو और भूत कहा है? शाह अंदलुस रॉड्रिक ने बादशाहों की तरह गरज कर कहा, मैं 1,00,000 से ज्यादा फौज लेकर जाऊंगा ताकि दुनिया की दूसरी कौमों को भी पता चल जाए कि शाह अंदलुस कितना ताकतवर है।